Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update of the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर भी हम नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा को अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियों से सुसज्जित करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, मार्केट मंत्र में आपका करजोर अभिनंदन.
धन्यवाद प्राची.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर इससे पहले आइए सुने हेडलाइंस.
थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rebound, Sensex gains over 300 points, Nifty reclaims 25,500 level. India joins Pax Silica, coalition for securing silicon stack, including critical minerals, semiconductor and advanced AI systems. And India's core industries register growth of 4% in January this year.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में उछाल. सेंसेक्स 300 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 25,500 के स्तर पर बंद हुआ. भारत बना पैक्स सिलिका गठबंधन का सदस्य. गठबंधन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर और उन्नत एआई प्रणाली सहित सिलिकॉन स्टैक को सुरक्षित करना है और इस वर्ष जनवरी में भारत के प्रमुख उद्योगों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई.
Listeners, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं, आइए जाने हमारे घरेलू शेयर बाजार का हाल. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में कल आई भारी गिरावट के बाद आज लगभग 0.4% का उछाल देखने को मिला. सत्र की शुरुआत नकारात्मक रुख से हुई, लेकिन कुछ समय बाद लिवाली के कारण कारोबारी माहौल जो है वो उत्साहित हुआ और अंततः बाजार में तेजी देखने को मिली. हालांकि सत्र के अंत आते आते सूचकांकों में अंतर्दिवसीय लाभ में कुछ कमी देखने को मिली. सेंसेक्स 317 अंक बढ़कर 82,815 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 117 अंक बढ़कर 25,571 पर बंद हुआ.
Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, bounced back today after witnessing a massive downfall yesterday. The Sensex climbed 317 points to close at 82,815, while the Nifty added 117 points to settle at 25,571. The markets opened on a negative note, but early losses were swiftly erased as value buying lifted sentiment. However, towards the end of the session, the indices trimmed some of their intraday gains.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई. शीर्ष का प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सर्वप्रथम एनटीपीसी 2.7% से ज्यादा, लार्सन एंड टूब्रू लगभग 2.4% और हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगभग 1.6% की बढ़त दर्ज की गई. घाटे में रही कंपनियों के शेयरों में सबसे पहला नाम टेक महिंद्रा 1.7% से अधिक, इन्फोसिस 1.2% से अधिक और इटर्नल के शेयर में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई.
Among the sectoral indices at BSE, 22 out of 24 sectors locked gains. Power sector jumped 1.9%. PSU Bank rose over 1.8% in utilities, as well as capital goods climbed over 1.5%. Conversely, IT dropped 1% and focused IT declined over 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,265 companies declined, shares of 1,917 companies advanced and shares of 167 companies remained unchanged.
जानेंगे श्रोताओं अब रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे कमजोर होकर 90.98 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान समाचार तैयार किए जाने तक 97.89 पर चल रहा था. सुषमा, आज मार्केट ने फिर से अंगड़ाई ली है 0.4%। कल बहुत भारी, मतलब कि 1200 अंकों से ज्यादा मार्केट गिरा, तो आज जो मार्केट में ये जो अपलिफ्टमेंट आई है उसके क्या फैक्टर्स रहे होंगे, वेदर इट इज एफआईआई, डीआईआई, सेलिंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन और एवरीथिंग, या सब कुछ ही एक साथ मतलब इस पर जोर दे रहा है?
देखिए, ये जो रिबाउंड हुआ है, आज जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, वो ज्यादातर जो हमारा जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स, वो सेंटिमेंट ड्रिवन कहा जाता है। और सेंटिमेंट आज का है कि भारत ने आज एक बहुत बड़े कोलिशन में ज्वाइन किया है, उसको पैक सिलिका कहते हैं, इसके बारे में बहुत लिखा गया है,
तो जी, आगे भी हम कार्यक्रम में इसके बारे में बात
जरूर करेंगे। आपने बात की होगी, लेकिन इसका साइनिंग अभी हुआ है
जी।
और ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, जो यूएस के एम्बेसडर हैं, उन्होंने सर्जियो गोर ने इसके ये इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में भी खास बोला कि भाई टैरिफ्स का जो टैरिफ्स लागू किए जाने थे वो अब हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये मार्केट के ऊपर इसका काफी असर रहा है, क्योंकि यही चीज खासकर जो इंडो यूएस ट्रेड डील, इसके मैं भी कई मार्केट मंत्र में बात की है इसके बारे में, कि मार्केट्स बहुत मतलब निराश थी कि भाई इंडो यूएस ट्रेड डील नहीं हो रहा, और जब से ट्रेड डील हुआ है तो थोड़ा सा उनको शांति मिली है कि भाई ये इंडो, और खासकर जैसे मैंने कहा, फिर से यूएस एम्बेसडर ने कहा हाँ हमने कहा है, लेकिन जो फाइन प्रिंट है, जो साइनिंग है, वो अभी होना है और ये बहुत जल्दी होगा। दूसरी बात ये है, ये जो पैक सिलिका, वो भी यूएस लेड कोअलिशन है, और इसमें 10 जो है बहुत बड़े बड़े देश है, यूएस भी है, जापान भी है, नेदरलैंड्स हैं, तो ये बहुत जो खास महत्वपूर्ण देश हैं, वो इसके मेंबर हैं। और इसमें ये भी पहले ये कहा जा रहा था भाई इंडिया को इन्होंने अभी न्योता नहीं दिया है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अब न्योता भी दिया और बड़े धूमधाम से इसकी साइनिंग सेरेमनी भी हुई है एआई समिट में। तो ये जो दो चीजें हैं, इससे मार्केट को थोड़ी सी ये कॉन्फिडेंस आ गई कि इंडिया के जो टाइज हैं अमेरिका के साथ, वो अभी हालात उनके अच्छे हैं।
Sushma ji, I want to, you know, bring you to the fact, of course, today the markets have bounced back after the fall we saw yesterday. But overall, if we look at the market today being Friday, we do see that although the markets have closed in the green, you know, overall, if you look at the market for the week, Nifty 50, you know, rose by 0.39% and the Sensex rose by 0.23%. But still, even today, if you look at the trade and over the week, there's still a lot of volatility that is happening. And like you said, the markets have, of course, taken comfort from the fact that, you know, the India-US deal has, you know, from the time when there was no news coming into the fact that we've taken the first step. But then, are we going to, given overall the geopolitical situation and everything, is this volatility likely to stay on and affect the markets in the coming weeks?
Well, I think the volatility this week, especially if you notice, if you dissect this fall in the last few days, has been during the AI Impact Summit.
Right.
Now, the IT stocks, which should have gone up because you're talking about AI and, you know, AI impact, and our IT stocks companies are doing so well. But instead, they have crashed. Now, why is that? The reason is that there is a feeling that our IT companies follow a very traditional model of software, which was
very
good originally.
We're still to catch up with the AI.
And we are not in the big league. After all, what is the big league has come now in the form of open AI, in the form of Anthropic, in the form of Google's Gemini, DeepMind, DeepSeek. So you have all these big names which are coming here, you know, the whole range, and of course Nvidia, which is not formally part of the summit. But all these big names, these huge companies, giant companies, which are reflective of the boom in AI, which has actually powered the bullish trends in American stock markets, in the US stock markets. So there's a feeling that perhaps our IT companies are falling behind. They have not, you know, will they be able to withstand this kind of AI disruption? So that is, I think, at the core of this week's, at least, you know, dip in markets.
नहीं बिल्कुल सुषमा, हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा सत्र है जिसमें कि आईटी अगर सेक्टर स्पेसिफिक हम देखें तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और जिस पर बहुत सारे कमेंट्स भी हमें हर जगह से मिल रहे हैं देखने को। लेकिन हम उसका अगर सकारात्मक पक्ष देखें, मतलब आप इसमें अपनी राय जरूर शामिल कीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं तैयारी भी तो है,
बिल्कुल
ये भविष्य की संभावनाओं की तैयारी है।
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मार्केट, आप तो बड़े मच्योर रैशनल तरीके से सोचते हैं, लेकिन मार्केट्स बड़ी, से जैसे मैंने पहले कहा, सेंटिमेंट ड्रिवन होती है। जो एक इवेंट होता है या कोई डेवलपमेंट होता है उसका इमीडिएट रिएक्शन होता है मार्केट में कि भाई अरे ये तो एआई में हमारे पास इतना बड़ा कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है एलएलएम, हालांकि हमारे अनवेल हुए हैं इस समिट में हमारा सर्वे भी आए और लेकिन उस
अभी,
मुकाबले
अभी नहीं,
उस मुकाबले में नहीं है हम। ये कहना बहुत जरूरी है, यूएस और चाइना जहां तक पहुंचे हम उस मुकाबले तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि इंडिया इतना पीछे है कि वो उनके साथ नहीं चल सकता। इंडिया जरूर उनके साथ चल सकता है और चल रहा है, क्योंकि अगर आप इन जो सारी इंटरव्यूज और बातें और जो अग्रीमेंट्स को फॉलो करें तो वो देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा इनोवेशंस है, बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप, और जो हमारी एलएलएम अभी जो अनवेल हुई है सर्वम एआई, वो हमारे मार्केट के लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि वो लैंग्वेजेस, हमारे जो लैंग्वेजेस है उनको टारगेट किया गया है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, एआई हमारे हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए
और एआई की जो वैश्विक परिकल्पना और जो संभावनाएं हैं उसके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट,
वी आर द बिगेस्ट मार्केट, वी आर द बिगेस्ट मार्केट,
राइट। इस पे चर्चा होगी आगे, पर स्वाति
बिल्कुल
प्राची पहले सुन लेते हैं कि एशियन और यूरोपियन मार्केट्स में क्या हुआ।
जी, आज एशिया के शेयर बाजार का रुख मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी ने पहली बार 2.3% की रिकॉर्ड छलांग लगाई और 5,800 अंकों के ऊपर बंद हुआ। ये तेजी चिप और डिफेंस सेक्टर में जबरदस्त लिवाली के कारण देखने को मिली। वहीं बात अगर सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स की करें तो ये सूचकांक 0.3% से अधिक बढ़ा। इसके विपरीत देखें तो जापान का निकेई 1.1% से अधिक गिरा और हांगकांग का हैंगसैंग इंडेक्स 1.1% लुढ़का। इस बीच चीन का शेयर बाजार छुट्टी के कारण बंद रहा। बात अगर यूरोप के मार्केट्स की करें तो आज यूरोप के बड़े सूचकांक सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। फ्रांस का कैक 0.8%, लंदन का फुटसी 0.6% और जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 0.4% बढ़त के साथ नजर आया।
Moving on to the US markets, Wall Street finished lower yesterday as investors rotated out of financial stocks and closely monitored escalating tensions between the United States and Iran. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average shed over 0.5%. The Nasdaq Composite Index dropped 0.3% and the S&P 500 dipped almost 0.3%. On the economic front, the overall U.S. trade deficit for 2025 decreased by $2.1 billion to $901.5 billion as compared to 2024. Meanwhile, the number of Americans filing new applications for unemployment benefits fell more than expected this week, according to the data released by U.S. Department of Labor. Initial claims for state unemployment benefits dropped 23,000 to a seasonally adjusted 206,000 for the week ended on February 14th.
भारत और अमेरिका ने आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पैक्सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये घोषणा पत्र महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर के उत्पादन तथा तेजी से विकसित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेगा। इससे सुरक्षित और मजबूत वैश्विक सिलिकॉन और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सकेगा। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अग्रणी भूमिका निभाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के प्रभावशाली इंजीनियर सबसे जटिल और उन्नत 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सेमीकंडक्टर उद्योग को 10 लाख से अधिक प्रभावशाली लोगों की आवश्यकता है और ये जरूरत देश के भीतर ही पूरी हो जाएगी।
यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत फैब सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा।
सुषमा, क्योंकि पैक्सिलिका जो है वो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक अलायंस है, तो रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, मान लीजिए तो जियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स को भी ध्यान रखते हुए,
हाँ, बिल्कुल,
तो भारत के लिए इसमें शामिल होना कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है आने वाले वक्त में?
देखिए, ये जो पैक्सिलिका है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि और शायद आपने इसके बारे में भी चर्चा पहले भी की होगी मार्केट मंत्रा में, क्योंकि ये जो मिनरल्स जो चाहिए हमारी नई इकोसिस्टम के लिए, जो एआई इकोसिस्टम के लिए जो हमें मिनरल्स चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, इसके जो इस वक्त काफी मोनोपोली है एक देश की, और वो है चीन
जी।
और वो अब इसका जो इसका एहसास हम सबको हुआ जब यूएस और चीन के बीच में डेढ़ साल पहले जब ये ट्रेड टेंशन्स हुए उनके बीच में, और फिर चीन ने इनकी एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शंस। अब उन्होंने रोक सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं लगाई, उन्होंने और देशों के लिए भी लगाई, वो इंडिया के लिए भी लगाई। तो उस वक्त हमें पता चला कि, और सब देशों को पता चला,
स्तर पर सबको अखर गया
बिल्कुल, कि भाई ये इनके रेयर अर्थ मैग्नेट्स तो हमें अपनी गाड़ियों में चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में चाहिए, हमारी जो वॉशिंग मशीन्स में चाहिए, हमारी टीवीज में चाहिए। तो ये सारी जो छोटी छोटी जो ये चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, इसको चिप्स कहते हैं, और इसके ये जो मैग्नेट्स हैं वो वहीं से आ रहे हैं, ज्यादातर 80% वहां से चीन से आ रहे थे। तो जब तक ये एहसास नहीं हुआ तब तक मेरे ख्याल पूरे विश्व भर में किसी को ये लगा नहीं कि हमें इसके ऊपर कुछ
काम पर भी हमें वर्क करना चाहिए,
इस पे काम करना चाहिए। तो पैक्सिलिका का मतलब ये है कि एक कोलिशन है 10 देशों का, और ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, ये यूएस है इसमें, नेदरलैंड्स है इसमें, सऊदी अरेबिया, यूके भी है, तो ये बहुत डेवलप्ड नेशंस भी हैं, वेस्ट एशिया के भी देश हैं, और अब इंडिया भी आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इसमें मतलब ये है कि ये जो है पैक्सिलिका सिर्फ मिनरल्स के लिए नहीं, वो सोच रहे हैं कि आप मिनरल्स को लेके बिल्कुल जो सेमीकंडक्टर्स और जो पूरे एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पूरा इकोसिस्टम के बारे में हम अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं इनको मिलाइए। अब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मिनरल रिसोर्सेज हैं, नेदरलैंड्स में उनकी जो ग्राफिक्स की उनकी कैपेबिलिटीज हैं, अमेरिका में इनोवेशन की जो कैपेबिलिटीज हैं, इंडिया में हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ्स हमारे पास बहुत हैं, और इंजीनियरिंग टैलेंट तो हमारे पास है ही है। तो इन सबकी जो एक्सपर्टीज है मिला के एक सप्लाई चेन बना दे जिससे इनको एक ही देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
जी, सो टेकिंग फॉरवर्ड द स्टोरी, एट द साइनिंग सेरेमनी ऑफ दिस पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर सेड दैट फ्रॉम द ट्रेड डील टू पैक्स सिलिका टू डिफेंस कोऑपरेशन, द पोटेंशियल फॉर इंडिया एंड यूएस टू वर्क टूगेदर इज ट्रूली लिमिटलेस।
India's entry into PAXSILICA isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity. Policies that will reinforce US-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world and especially with partners like India. And critically, India brings strength. Peace comes through strength. India understands this. India understands strong borders. That strength, that sovereignty is exactly what PAXSILICA amplifies.
Highlighting the growth Highlighting the growing India-US collaboration in emerging technologies, U.S. Secretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said both countries are affirming a pro-innovation approach to artificial intelligence. Emphasizing on the Pax Silica Declaration, Mr. Hellberg said that this document is not merely an agreement on paper, but a roadmap for a shared future. He noted that both nations are building a new architecture that diffuses intelligence, placing the power of AI into the palms of people's hands and unleashing a wave of unprecedented possibilities. Sushma, of course, at one level, the fact that India has joined this Pax Silica has a global ramifications, you know. Also, at the domestic level, what is likely to be the impact and how crucial is this particular, you know, India joining this particular initiative is for on domestic initiatives such as India Semiconductor Mission? The finance minister yes. announced, you know, 2.0, mm-hmm. the second phase of this mission and other related PLI schemes.
Well, it's not just PLI schemes. This is, as I said, this is goes the entire range of the supply chain. It starts from minerals, critical minerals, as well as rare earths. Now, India has identified a national critical minerals mission. Among, there are about 30 critical minerals they have identified. And among this, we also have, there's a rare earths mission also separately. India, in fact, I think it must also be clarified that actually rare earths are not rare. They are commonly available in the earth, but they are combined with other minerals and therefore they are difficult to extract.
Yes.
That is why they are called rare earth. Now, India has one of the largest reserves of rare earths, but we have not made the effort to actually mine and process them. And this is an effort that is going to begin now, because recognizing the fact that we have this wealth of resources, we should utilize it. And it's one of the strengths that India is going to bring to Pax Silica. So India is, of course, going to not only utilize its own strengths, but also going to utilize the strengths of these other countries in, if, as you pointed out, in these other manufacturing industries.
Yes.
Once we get, you know, minerals which are able to be made, for instance, into rare earth magnets. And recently, just a few days ago, there was a report that India is now producing its first rare earth magnet.
Right.
So therefore, we will no longer, not just our own production, we will no longer have to rely on China, which stalled our production of automobiles, for instance. We can rely on the production from the other coalition countries.
Right.
So
right.
it is going to be a huge, of great critical importance to domestic manufacturing.
Let's move on to the next story. The Ministry of External Affairs today said that both India and the United States are working to finalize a mutually beneficial trade agreement. Addressing the media in New Delhi, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said that a delegation led by the chief negotiator will visit the US next week. The spokesperson also noted that India will consider buying oil from Venezuela if it is commercially viable. And let's stick on the next story. The combined index of 8 core industries, ICI, registered growth of 4% in January this year on an annual basis. The index eased from a revised 4.7% in December and 5.1% from January in the previous year. According to the data released by the Commerce and Industry Ministry, the moderation reflects continued weakness in energy-related sectors, even as steel, cement and electricity maintained positive momentum. As per the data, cement production surged by 10.7%, steel production increased by 9.9%, electricity rose by 3.8%, fertilizer production increased by 3.7%, and coal production increased by 3.1% during last month. However, the crude oil production declined by 5.8% and natural gas production fell by 5%. While petroleum refinery products production remained unchanged as compared to January 2025, the Commerce Ministry data showed that the cumulative growth rate of ICI during April to January is provisionally reported at 2.8% as compared to the corresponding period of last year. Sushma, very quick comment from you. ICI, we see for January 2026, yes. 4%. Mm-hmm. But if you compare it to December 2025, mm-hmm. it was 4.7%.
Yeah.
What do you have to say for that?
Well, I think this is largely reflective of the weakness in crude and natural gas production. And this is something that I think, unfortunately, is inevitable, because our domestic crude oil production is on a downward trend yes. because we have aging oil fields, and that's why our production is going down, and that is reflective in the index. But if you see, the very positive fact is that cement production and yeah. steel production have increased by,
I wanted to draw your attention to this fact only because steel, cement, coal, if yes. you look at it, electricity,
yes.
infra, if you look at the, those sectors which are, you know, critical for the infrastructure yes. development, yes. you know, they are the ones which are doing very well. So it's yes. also kind of a positive, like you said, a very positive statement.
Yes. If you were to cut out crude oil and natural gas mm-hmm. from it, this index would look up, you know, very, very different. But of course, you know, it is important and yeah. therefore it is part of the crude, of the core sector. But cement production and steel is just showing how fast infrastructure is right. growing. Electricity generation, of course, but also by, you know, nearly 4%.
Right.
Fertilizer production by 3.7%. So only coal production is not increasing by 3.1%, but coal production has been doing relatively pretty good for the last year or so. So I think it's, you know, if you take it holistically, it looks weak. But if you break it up mm-hmm. and you see the various components, it is not, it's not really a negative picture.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में एआई और डीप टेक स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में एआई तकनीक के उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की. यूपीआई को सरल और विस्तार योग्य डिजिटल नवाचार का एक मॉडल बताते हुए उन्होंने भारतीय कंपनियों में विश्वास व्यक्त किया और घरेलू उत्पादों पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया.
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on the right track and exports will play a key role in sustaining the country's position as the fastest growing large economy over the next 25 years. He said this while launching 7 additional interventions under the Export Promotion Mission in New Delhi today, which are aimed at strengthening the MSME exports.
The benefits of global trade should reach every MSME, every entrepreneur, every startup, big or small. Our effort is that new products go from India to, or new services go across continents. Our effort is that new markets are captured. Our effort is to promote new exporters, encourage our young men and women. And it is with that larger objective, dovetailed with our efforts to promote investment, technology coming to India, to promote new age businesses.
Sushma, very quick comment. As the minister said, that exports will play a key role for, you know, and growth as the fastest growing economy. And when you combine it with the recent FTAs that we have signed, how do you see the future?
Well, it's quite amazing that, you know, our export sector is actually booming at a time when, you know, there's been so much of right. dire predictions about exports in relation to the Indo-US trade deal. Our exports are have even been going up into the United States. You know, it's quite in a large range of areas, yeah. despite the 50% tariffs at that time. Mm. And overall, also, we are doing pretty well in a world which is largely recessionary.
Right. Let's move on to commodities. Mm-hmm. Global crude oil prices dropped today. Brent crude was trading nearly 0.5% down at $71.34 per barrel. And WTI crude was trading over 0.5% down at $66.07 per barrel when reports last came in. Meanwhile, traders continued to monitor mounting tensions between the United States and Iran. Earlier, US President Donald Trump warned that Iran must make a deal over its nuclear program or be ready for consequences. Again, a very quick comment from you, Sushma. Mm-hmm. At the moment, of course, there is again, we are going to see volatility because of the yes. situation, mm-hmm. how it pans out. But for India, we're still in a comfortable position so far as our crude oil basket is concerned.
Yes, so far so good. But much will depend on what happens in that front, because what the US decides to do is going to have immediate ramifications for the oil markets.
Right. Let's move on to the gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.2% up at 1,56,940 rupees per 10 grams, while silver was trading 4.1% higher at 2,52,470 rupees per kilogram a short while ago.
MCX में ताजा समाचार तैयार किए जाने तक अप्रैल अनुबंध वाला सोना 0.8% बढ़कर 1,56,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 3.5% बढ़कर 2,49,827 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. सुषमा, कार्यक्रम में आने के लिए, भाग लेने के लिए और इतने उत्साह से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
आपको भी शुक्र, धन्यवाद फॉर इन्वाइटिंग मी हियर.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rebound. Sensex gains over 300 points. Nifty reclaims 25,500 level. India joins Pax Silica Coalition for Securing Silicon Stack, including critical minerals, semiconductor and advanced AI systems. And country's core industries register growth of 4% in January this year. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।